नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के 177 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि इससे आवाजाही में सुधार होगा।
भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग, ये प्रोजेक्ट बिहार झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां जा सकेगी और बहुत बड़े तीर्थ स्थल देवघर धाम को भी जोड़ता है ये। और साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है।
मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हवाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मुकामा मुंगेर खंड के 4 लेन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। श्री रामगुलाम 8 दिन की भारत यात्रा पर हैं और कल शाम वाराणसी पहुंचे। शाम को श्री मोदी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी सीमावर्ती थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नेपाल के अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और भारत के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। उधर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटे भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गहन जांच, गश्त और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल में युवाओं के प्रतिनिधियों ने एक समूह ने काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कई युवा इस निर्णय का विरोध करने लगे। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सानंद विधानसभा क्षेत्र में 66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास का वादा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सानंद के हर गांव में वर्ष 2039 तक जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और वनीकरण सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमरीका के साथ बातचीत कर रही है। उनकी ये टिप्पणी अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापार वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती सहजता पर सकारात्मक विचार साझा करने के बाद आई है। केंद्र सरकार ने हाल में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूर्व पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 31 दिसंबर तक बिना बिके स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी घोषित करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं पर मूल एमआरपी दिखाई देनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियों का आकलन किया गया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 1 से 2 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के ग्रुप ए मैच में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।